समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अपना व्यक्तित्व हमेशा शून्य के समान रखिए ताकि आप में से कोई कुछ घटा ना सके। इसी प्रेरणादायक पंक्ति के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस सुहावनी प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, लाइक मुकेश हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम, दिस इज आज सवेरे एंड वी कैन गारंटी यू दैट टिल 8 AM वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू विल डेफिनेटली बी एंजॉयिंग दिस इन्फॉर्मेशन। टुडे इज 14th of March 2026 and it's a Saturday, so very happy Saturday to all of you. The wait is finally over and the weekend is here for all of you, so enjoy the weekend and let's just begin our program with the news headlines.
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के सिलचर का दौरा करेंगे जहां वे 23,550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी और जानकारी हमारी संवाददाता से।
प्रधानमंत्री आज सिलचर के अंबिकापुर में तीन बड़ी परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। इनमें 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाला सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर, लगभग 565 करोड़ रुपए का सिलचर टाउन फ्लाईओवर और 122 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पत्थरकांडी कृषि कॉलेज शामिल है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा त्रिकोणा में बराक घाटी के लोगों के लिए बने मिनी सचिवालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दरगाकोणा के मीठा पानी में शहरी और आवास विभाग के नव निर्मित कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। शाश्वती भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
बाद में प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 114 के खंड शामिल हैं। इन परियोजनाओं से सड़क सुरक्षा में सुधार, यात्रा के समय में कमी, क्षेत्रीय संपर्क में सुधार, पर्यटन को बढ़ावा और आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना है। श्री मोदी कोलकाता में भाजपा की एक रैली को भी संबोधित करेंगे।
India has highlighted to Iran the importance of unhindered transit of energy and goods amid the current situation in West Asia. During the interministerial briefing on recent developments in West Asia, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that Prime Minister Narendra Modi spoke to Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian on Thursday and stressed on New Delhi's priority regarding the safety and well-being of Indian nationals in the region, including in Iran. The spokesperson also reiterated India's consistent position that all the issues must be resolved through dialogue and diplomacy.
प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हमलों की पोजीशन, जो हमारा पक्ष है भारत का, कि डायलॉग डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़ें ताकि कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाए जल्द से जल्द।
Special Secretary from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Rajesh Kumar Sinha said that there are 24 Indian-flagged vessels to the west of Strait of Hormuz. He said there are 3 Indian-flagged vessels to the east of Strait of Hormuz. Overall, port operations across India remain stable. A standard operating procedure has been issued for all the major ports and state maritime boards to proactively facilitate shipping lines and exporters through stakeholder coordination and time-bound grievance redressal. A nodal officer as a single point of contact has been appointed by all the major ports. Government remains fully committed to ensuring the safety and welfare of Indian seafarers and protecting the India's maritime interests. The Joint Secretary from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said India is self-sufficient in the production of petrol and diesel. She said all refineries are working at 100% capacity and refineries have adequate inventory of crude.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष के कई सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय इन नोटिसों के प्रारूपों की जांच करेंगे। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा दिया गया नोटिस ये दर्शाता है कि उन्हें संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा दिया गया नोटिस कानून के अनुरूप है।
President Draupadi Murmu has emphasized that the empowerment of Divyangjan is crucial for building an inclusive society. She said, however, this cannot be achieved solely through the efforts of the government as it requires the active participation of every individual and institution in the society. The president stated this while addressing the Purple Fest held at Rashtrapati Bhavan yesterday. President Draupadi Murmu also highlighted various government schemes like Pradhan Mantri Divya Asha Kendra and Sugamya Bharat Abhiyan for providing benefits to the Divyangjans. She added that these schemes are providing opportunities to the Divyangjans in becoming independent.
प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है उपकरण लाखों लोगों को स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का सहायता कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों को साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा में हमारे दिव्यांगजन भी बराबर की भागीदारी है।
Our correspondent reports that the Purple Fest was organized by the Ministry of Social Justice and Empowerment to celebrate the talent, achievements and aspirations of Divyangjans.
The festival witnessed participation of over 8,000 Divyangjan serving as a symbol of empowerment and showcasing the talent and potential of persons with disabilities. The event was organized with an aim to raise awareness about different disabilities and their impact on people's lives and to promote understanding, acceptance and inclusion of persons with disabilities within the society. During the event, Amrit Udyan was opened exclusively for Divyangjan. The day-long fest unfolded in vibrant shades featuring a rich spectrum of literary discussions, sports activities and corporate collaborations all aimed at fostering an inclusive society. It celebrated inclusivity, empowerment and talent, bringing together diverse voices, thought leaders and corporate partners to shape a more accessible future for Divyangjan. The festival underscores India's commitment to inclusive governance, celebrating the talent, entrepreneurship and contributions of persons with disabilities. It aims to inspire a society where every individual can thrive with dignity and opportunity. With Rohan and Samarth, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
युवा संगम के छठे चरण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत देश भर के युवाओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 मार्च है। इच्छुक युवा वेबसाइट के जरिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
Tribal Affairs Minister Joel Oram has said that India's tribal communities possess an extraordinary wealth of art, culture, heritage and traditional knowledge systems. He said this while speaking at the valedictory ceremony of Tribes Art Fest 2026 in New Delhi yesterday. Mr. Oram said that these traditions reflect a deep connection with nature, community and wisdom passed down through generations. On this occasion, Union Minister of Culture Gajendra Singh Shekhawat highlighted that tribal art reflects traditional ecological knowledge, spiritual imagination and the social stories of communities through diverse artistic forms. He said that initiatives such as national art festivals play an important role in connecting artists' creativity with sustainable livelihood opportunities.
शतरंज में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। असम के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मयंक राज्य के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। मयंक ने स्वीडन में अंतिम मानदंड हासिल कर भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव अपने नाम किया है। और अब रुक करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले हाल दिल्ली के समाचारों का। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार के ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी या जमाखोरी न करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि ईंधन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी पुष्टि की है कि घरेलू पीएनजी की आपूर्ति स्थिर है। प्राकृतिक गैस के आवंटन में घरेलू पीएनजी और परिवहन क्षेत्र के सीएनजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने जानकारी दी है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतराल को 21 दिन से बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कल सर्वाइकल कैंसर जागरूकता विषय पर दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव के उपाय तथा समय पर जांच और टीकाकरण के महत्व पर चर्चा की गई। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए।
And from Delhi, let's move on to Chennai. The mass rapid transit system extension between Velachery and St. Thomas Mount will be launched today. The Chennai Metro Rail Limited to remove the shuttering at an obligatory span as observed by the Chief Commissioner of Railway Safety. All 43 pairs of trains operated up to Velachery from Chennai Beach will be extended up to St. Thomas Mount, establishing the much-needed connectivity with the Tambaram Chennai Beach suburban train stretch and the metro train station at St. Thomas Mount. And we have some more news from Chennai itself. A three-day international rail coach exhibition was inaugurated at the Integral Coach Factory at Chennai. The event was organized by CII in association with ICF. In his address, the general manager of ICF, Mr. Subha Rao, said that the expo, which was previously held in 2018, has become a global platform for national and international companies with an emphasis on sustainability, safety and indigenous development along with the quality first approach.
और मुंबई में महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल ने सरकारी कैंटीनों का आधुनिकीकरण करने और परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण मूल्य में सुधार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुंबई के विधान भवन में कल आयोजित समीक्षा बैठक में श्री रावल ने कहा कि व्यंजनों के पोषण और मूल्य, कैलोरी तथा खाद्य घटकों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। उन्होंने सेवाओं में सुधार के लिए योग्य रसोइयों, आहार विशेषज्ञों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तत्काल भर्ती का भी आह्वान किया। और महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति टटकरे ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने और प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सुरक्षा कवच बनाने पर बल दिया है।
And from Mumbai, let's move on to Hyderabad. CSIR, Indian Institute of Chemical Technology, that is CSIR IICT Hyderabad, organized an industry interaction meet with Laghu Udyog Bharati yesterday at the CSIR IICT auditorium to strengthen the collaboration between scientific research institutions and the micro, small and medium enterprises, that is the MSME sector. The meeting was organized by the Business Development and Research Management Division of the CSIR IICT to facilitate stronger linkages between the institute and industry. The program brought together around 75 entrepreneurs from the MSME sector, representing diverse industries such as chemicals, active pharmaceutical ingredients, polymers, food processing, energy and environmental technologies.
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत पहली पूरक मतदाता सूची अगले सप्ताह प्रकाशित हो सकती है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक सूची में 6 लाख से अधिक नामों की समीक्षा की गई थी। हालांकि लगभग 15 लाख नामों का निपटारा हो चुका है। इस बीच लगभग 35 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इन मामलों का निपटारा भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा।
And about Bangalore, a comprehensive cleanliness drive was carried out at NTI layout in Vidyaranyapure under the Greater Bangalore Authority North as part of the Swachh Sarvekshan initiative. The drive, aligned with the Swachh Bharat mission, involved the NTI layout residents welfare association, GBA officials, local residents and Purv Karmikas. Solid waste management teams cleaned streets, footpaths, drains and open spaces, removing accumulated garbage, plastic waste, silt and dry leaves. A walkathon led by nominated corporator Lakshmi Hari and association president N. Shankar Rao was also organized to spread awareness on cleanliness and waste segregation.
श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। इधर राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आसमान साफ रहेगा। शहर में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और कोलकाता में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु के मौसम का हाल सुना रही हैं तन्वी।
Let's begin with Chennai. Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 24 degrees and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky but with haze. The temperature will hover somewhere between a minimum of 21 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius. And Bangalore had a mainly clear sky which might become partly cloudy towards afternoon or evening. The minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 33 degrees.
अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
Yes, let's begin with the year 1489, where Catherine Cornaro, the Queen of Cyprus, sold her kingdom to Venice. In the year 1931, India's first talking film, Alamara, was released, revolutionizing Indian cinema and initiating the talkie era. In 1939, Slovakia declared independence from Czechoslovakia under German influence, increasing tensions in Europe before the outbreak of World War II. In 1948, the United States Senate approved the Marshall Plan to support Europe's economic recovery after the World War II.
और 1987 में फिजी में रक्तहीन सैनिक क्रांति के बाद सरकार का तख्ता पलट किया गया। इसके बाद 1989 में दक्षिण अफ्रीकी नेशनल पार्टी द्वारा पीटर बोथा के स्थान पर FWD क्लार्क को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और 1990 में श्रीमती अर्था पास्कल ट्रेविल हैती की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी।
In the year 1995, astronaut Norman Thagard launched aboard the Soyuz TM-21 to the Mir space station, becoming the first American to travel into space on a Russian spacecraft.
वर्ष 1999 में स्पेन के कार्लोस मोया विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी बने। और 2002 में सर्बिया और यूगोस्लाविया में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद दो वर्ष बाद 2004 में चीन में निजी संपत्ति को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। और वर्ष 2007 में करगिल और स्कार्दू के बीच भारत पाकिस्तान में बस सेवा शुरू करने पर सहमति बनी। और श्रोताओं, अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात गोविंद विनायक करंदीकर की। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे मराठी भाषा में रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक, अनुवादक और समीक्षक थे। उन्हें अक्सर विंदा करंदीकर के नाम से जाना जाता है। उन्हें वर्ष 2006 में 39वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको उनके साहित्यिक कार्यों के लिए कुछ अन्य पुरस्कार भी मिले, जिनमें केशवसुत पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू साहित्य पुरस्कार, कबीर सम्मान और वर्ष 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप भी शामिल है। विंदा करंदीकर ने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभाव जैसे पुराने मराठी साहित्य का भी आधुनिकीकरण किया। अरस्तु के पोएटिक्स और शेक्सपियर के किंग लियर का मराठी में अनुवाद भी उन्होंने किया था। विंदा करंदीकर के लघु निबंधों के संग्रह में स्पर्शाची, पल्लवी और आकाशा अर्थ शामिल हैं। आदिमाया, रानीचा बाग, शशय चाने कान, परीगा परी, परंपरा अनि नवता, स्वेद गंगा, मृदगंधा उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं।
And today is the death anniversary of Bibhuti Mitra, an Indian film director and producer known for his work in Hindi cinema during the mid-20th century. He began his directing career in the 1940s with early works such as Anguthi back in 1943 and Safar in 1946 and went on to helm and produce several films across multiple decades. His notable directorial and production credits includes Shabnam in 1949, Fagun in 1958, Basant in 1960, Ji Chahata Hai in 1964 and Mahua in 1969. He continued directing till 1970s. Let's enjoy a beautiful track from the film Fagun starring Madhubala and Bharat Bhushan.
कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
मेरे परदेसी
आज जयंती है सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिकविद अल्बर्ट आइंस्टाइन की। वे सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन इसी सिद्धांत पर काम करता है, जिससे सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टाइन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांतों सहित कई सिद्धांत दिए। उनके योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, केशिकीय गति, क्रांतिक उपच्छाया, सांख्यिक मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता आदि शामिल हैं। 1999 में उन्हें टाइम पत्रिका ने शताब्दी पुरुष घोषित किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सर्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। और श्रोताओं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ही कई वैज्ञानिक जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांतों से विज्ञान को एक नई परिभाषा दी, उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर ही हम देखते हैं कि ये जो आधुनिक हथियारों का निर्माण हो रहा है, उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित उनके ये हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये हथियार या जो भी हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए जो उपकरण बनाए, वो देशों की सुरक्षा के लिए बनाए थे। लेकिन अभी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो खाड़ी देशों में जिस प्रकार से तनाव छा रहा है, उसमें इन हथियारों का बहुत ही गलत कह सकते हैं कि हम यूज़ किया जा रहा है, तो उसको निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को हमें समझना चाहिए और उनके इन सिद्धांतों की सही मायनों में परिभाषा करनी चाहिए।
एब्सोल्युटली अ ग्रेट माइंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड दैट्स नॉट जस्ट अ नेम, इट्स समथिंग दैट वी स्टिल टॉक अबाउट, वी यूज हिज थ्योरीज एंड मच मोर।
बिल्कुल।
एंड आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग कार्ल मार्क्स। टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी। ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। ही इज बेस्ट नोन फॉर 1848 पैम्पलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रिटन अलोंग विद हिज फ्रेंड फ्रीडरिक एंजल्स, एंड हिज 3-volume दास कैपिटल दैट केम इन 1867 to 1894, a critique of classical political economy which employs his theory of historical materialism in an analysis of capitalism in the culmination of his life's work. Marx's ideas and their subsequent development, collectively known as Marxism, have had enormous influence.
श्रोताओं, आज जयंती है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार एस के पोट्टाकाटट की। वर्ष 1980 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी नवाजा गया। ओरु तेरर्ष वंटे कथा ओरु देशाथिन्ते कथा नादान प्रेमम चंद्रकांतम मणिकन मल्लिका उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं।
And today is the birth anniversary of Ustad Zia Muhyiddin Dagar, a North Indian Hindustani classical musician, one of the 19th generation of Dagar family Dhrupad musicians. He was largely responsible for the revival of the Rudra Veena as a solo concert instrument. Let's hear a rendition from Ustad Ji playing Rudra Veena in Kumar Shahni's film Khayal Gatha. Today is the birthday of Simone Biles, an American artistic gymnast. Her 11 Olympic medals and 30 World Championship medals make her the most decorated gymnast in history. Along with Simone Biles, today is the birthday of Rohit Shetty, an Indian filmmaker, screenwriter, stuntman, producer and television personality who works in Hindi cinema. A notable director of Hindi cinema, his movies often mix a genres of action, comedy and masala films. Let's hear the title track of one of his super successful films, Singham. And he has given a lot of successful movies, be it the Golmaal franchisee, be it Singham, be it Suryavanshi and Bol Bachchan and even Chennai Express. Here's coming another track from Chennai Express.
और अब श्रोताओं के साथ जाते जाते मना लेते हैं हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान का जन्मदिन। अभिनेता होने के साथ साथ आमिर निर्देशक, स्क्रीन राइटर और फिल्म निर्माता भी हैं। आमिर ने वर्ष 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 1973 में यादों की बारात में 8 साल की उम्र में अभिनय किया था। उन्हें उनके कार्यों के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इनमें वर्ष 1989 में फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ मेल नवोदित पुरस्कार, वर्ष 1997 में राजा हिंदुस्तानी और वर्ष 2002 में लगान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित कई पुरस्कार शामिल हैं। यह है उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी से उन पर फिल्माया गया गीत। पेश है उनकी फिल्म कयामत से कयामत तक से ये गीत।
हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदा दे रही है मंजिल प्यार।
आमिर ने कयामत से कयामत तक, दिल दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वही सिकंदर, अंदाज अपना अपना, रंगीला, राजा हिंदुस्तानी, गुलाम, सरफरोश, लगान, दिल चाहता है, रंग दे बसंती और ना जाने कितनी ही अन्य फिल्मों में अपने अभिनय से जादू बिखेर कर अपने चाहने वालों का दिल जीता है। पेश है उनकी फिल्म लगान से ये गीत।
तू आ जा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू, कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है
अपना अंबर है रे, ओ मितवा, सुन मितवा,
तो श्रोताओं मुकेश और तन्वी को दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।